देवगाथा पॉडकास्ट में एक और कहानी के लिए आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कहानी सुनेंगे कृष्ण और नरकासुर नामक एक राजा के बारे में, जो कि दैत्यों का राजा था। तो वैसे आपको नरकासुर में से असुर इस नाम से तो पता चल ही गया होगा कि किसी दैत्य या असुर की कहानी है, पर यह कहानी क्या है इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो चलिए सुनते हैं कृष्ण और नरकासुर की कहानी। तो एक बार जब भगवान कृष्ण द्वारका में पहुंच गए थे और वहां से राज्य कर रहे थे, तो इंद्र अपने हाथी ऐरावत पे बैठकर द्वारका नगरी पहुंचे। उन्होंने भगवान कृष्ण से मुलाकात की और नरकासुर नामक एक दैत्य के बारे में शिकायत की। यह नरकासुर पृथ्वी का पुत्र था और प्राग ज्योतिषपुर नामक नगरी से राज्य करता था। वैसे आपने पृथ्वी की कहानी सुनी है? हमने हाल ही बालगाथा पॉडकास्ट में इसे प्रकाशित की है। और धरती को पृथ्वी क्यों जाना जाता है, ये कहानी आप 6 भाषाओं में सुन सकते हैं बालगाथा पॉडकास्ट पर, जो कि केवल स्पॉटिफाई पे उपलब्ध है। खैर, चलिए चलते हैं वापस नरकासुर की कहानी की ओर। तो नरकासुर सभी जीवों पर अत्याचार कर रहा था। वह देवों, असुरों और राजाओं की पुत्रियों का अपहरण करके अपने महल में कैद कर लेता था। वैसे उसने 16,000 से भी अधिक युवतियों का अपहरण कर लिया था। नरकासुर ने वरुण के छत्र को चुरा लिया और मंदार पर्वत की चोटी को चुरा लिया। साथ ही उसने इंद्र की माता अदिति की बालियां भी लूट ली थी और अब वो ऐरावत को कब्जा कर लेने की धमकी दे रहा था इंद्र को। कृष्ण ने नरकासुर के बारे में सुना और इस बारे में कुछ करने का फैसला किया। कृष्ण ने गरुड़ को याद किया और तुरंत गरुड़ उनके सामने प्रकट हुए। और कृष्ण और उनकी पत्नी यानी रानी सत्यभामा गरुड़ पर चढ़ गए और प्राग ज्योतिषपुर की ओर गरुड़ उन्हें ले चला। प्राग ज्योतिषपुर के आसपास मुरु नामक एक असुर रहता था, जिसने इस राजधानी के और चारों ओर कई नुकीले भाले और डंडे लगा रखे थे। वैसे आपको पता है कि प्राग ज्योतिषपुर आता कहाँ है? यह नगरी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से असम, आज का जो राज्य है, वहां है ये नगरी। तो सोचिए, कृष्ण और सत्यभामा द्वारका से यानी गुजरात से यानी भारत के पश्चिमी छोर से गरुड़ पे बैठकर पूरे पूर्वोत्तर की ओर उड़ के चले गए, यानी हजारों किलोमीटर का उन्होंने सफर किया। खैर, तो ये मुरुन राक्षस ने जो सब भाले और नुकीली डंडे से प्राग ज्योतिषपुर की रक्षा करने के लिए जो व्यवस्था की थी, कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इन सब नुकीले डंडों और भालों को काट दिया। और जब मुरु ने भगवान कृष्ण पर हमला किया तो उन्होंने मुरु और साथ ही उसके हजारों पुत्रों को सुदर्शन चक्र से मार डाला। साथ ही उन्होंने 2 अन्य असुर जिनका नाम था हयग्रीव और पंचजन, उनको भी मार डाला। अभी भगवान विष्णु के अनेक रूपों में से एक हयग्रीव नामक देवता भी हैं, जिनका मुख घोड़े के समान है। तो विष्णु के उस अवतार और इस कहानी में जो राक्षस हयग्रीव है, उनके बीच में भ्रमित ना होइएगा। खैर, भगवान कृष्ण और सत्यभामा प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। आम तौर पर कहानियों में आपने सुना होगा कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध होता है तो देवताओं की पत्नी अगर देवी हो तो उनके पति उनके साथ युद्ध में शामिल नहीं होते और आते भी नहीं हैं। लेकिन आज की कहानी में आप सोच रहे होंगे कि रानी सत्यभामा भगवान कृष्ण के साथ क्यों आई जब कृष्ण नरकासुर से लड़ने के लिए निकले। तो कुछ ही पलों में इस सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा। इस कहानी को सुनते रहिए जैसे कि अब तक आपने किया है। नरकासुर और कृष्ण की सेनाओं के बीच में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। कृष्ण ने हजारों असुरों को मार डाला और नरकासुर ने कृष्ण के खिलाफ कई दिव्य हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन सभी हथियारों को आसानी से बेअसर कर दिया। नरकासुर ने कृष्ण के खिलाफ पहले ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन कृष्ण ने अपने खुद के ब्रह्मास्त्र से उसे बेअसर कर दिया। नरकासुर ने फिर कृष्ण के विरुद्ध अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन कृष्ण ने वरुण अस्त्र से उसे निष्प्रभावी कर दिया। तो अग्नि यानी आग को वरुण यानी पानी से उन्होंने टक्कर दी। फिर जब नरकासुर ने नागपाश का इस्तेमाल किया कृष्ण के खिलाफ, तो कृष्ण ने गरुड़ अस्त्र से उसे बेअसर कर दिया। वैसे नागपाश आपको पता है क्या होता है? यह वही अस्त्र है जिसका इस्तेमाल रामायण में हुआ था। अगर आपको वो कहानी पता नहीं है तो उसे आप देवगाथा पॉडकास्ट पे जरूर सुनिएगा। और खैर, आपको पता ही होगा कि गरुड़ और सांप या नाग के बीच में दुश्मनी, तो नागपाश को अगर बेअसर करना है तो गरुड़ अस्त्र आ गया भगवान कृष्ण की ओर से। अंत में हताश नरकासुर ने कृष्ण पर वैष्णव अस्त्र चलाया, लेकिन कृष्ण ने दूसरे वैष्णव अस्त्र से उसे बेअसर कर दिया। तो फिर नरकासुर ने फिर एक त्रिशूल से कृष्ण को मारने की कोशिश की। कृष्ण ने उस त्रिशूल के वार से बेहोश होने का नाटक किया। अब भगवान कृष्ण तो अपनी कलाओं के लिए और अपनी लीलाओं के लिए तो बहुत प्रसिद्ध है, तो इसके पीछे यानी कृष्ण ने बेहोश होने का नाटक करने के पीछे भी एक कहानी है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि नरकासुर को ऐसा वरदान मिला था कि उसे केवल वही मार सकता है जिसने उसे जन्म दिया हो। अभी नरकासुर के जन्म के पीछे कई कहानियां हैं। उनमें से एक कहानी ऐसी है कि उसकी माता थी पृथ्वी, जिसके बारे में हम पहले कह चुके हैं। तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी को वरदान दिया था कि केवल वही व्यक्ति उसे मार सकती है जिसने उसे यानी नरकासुर को जन्म दिया होगा। तो भगवान कृष्ण को बेहोश यानी मूर्छित हुआ देख सत्यभामा बहुत क्रोधित हुई, और जब उन्होंने देखा कि नरकासुर फिर से कृष्ण पर हमला करने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर नरकासुर पर हमला कर दिया और कृष्ण के सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सत्यभामा और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी का अवतार थी। तो एक तरीके से सत्यभामा नरकासुर की माता थी। माता ने नरकासुर को जन्म दिया और इसी वजह से सत्यभामा नरकासुर का वध कर पाई। है ना, बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए आगे देखते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ। नरकासुर की मृत्यु के बाद उसके महल के अंदर जो 16,000 से भी ज्यादा महिलाएं थी जिन्हें नरकासुर ने कैद कर लिया था, कृष्ण ने उन्हें छुड़ा दिया। साथ ही कई घोड़े और 6,000 हाथी भी थे जिनमें प्रत्येक हाथी के 4-4 दांत थे। कृष्ण ने इन सभी को द्वारका भेज दिया। वैसे मैं पहले कह चुका हूं कि प्राग ज्योतिषपुर भारत के पूर्वोत्तर में है और द्वारका पूरे पश्चिमी छोर पे है, यानी लगभग 2,500 से भी अधिक किलोमीटर तक इतने सारे घोड़े हाथी और इतने सारे जो हैं चुराई हुई चीजें नरकासुर द्वारा वो सारी द्वारका भेजी गई। सोचिए कितना लंबा सफर होगा, है ना। खैर, अन्य चीजें जो नरकासुर ने चुराई थी जो स्वर्ग में से लेके आए थे, तो कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि आप स्वर्ग जाओ और इन सारी वस्तुओं को सही सही मालिकों को वापस लौटा दो, जिनमें से इंद्र की माता आदिति की बालियां भी थी। हमारी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हमने पहले कहा है आपको कि कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें एक कहानी से जुड़ी अनेक कहानियां होती हैं, या एक कहानी के अंदर और एक कहानी होती है। आज भी हम कुछ और कथाएं सुनते हैं। कालिका पुराण में लिखा गया है कि नरकासुर मिथिला से आए थे और उन्होंने दानव वर्ष के एक राजा घटकासुर को पराजित किया था। इस वजह से वह प्राग ज्योतिषपुर के राजा यानी शासक बन पाए। और यह भविष्यवाणी भी की गई थी कि भगवान विष्णु के एक अवतार द्वारा ही उन्हें नष्ट किया जाएगा। इसीलिए उनकी माता पृथ्वी ने विष्णु से वरदान मांगा था कि उनके पुत्र की आयु लंबी हो और वह सर्वशक्तिमान हो। भगवान विष्णु ने उस समय उन्हें यही वरदान दिया था। नरकासुर से जुड़ी कुछ और की वह दंतियाएं हैं। उनमें से एक के अनुसार कालिका पुराण और अन्य ग्रंथों में यह लिखा गया है कि विष्णु के वराह अवतार नरकासुर के पिता थे और नरकासुर ये पहले से ही बुरा व्यक्ति या दैत्य नहीं था। वह बाणासुर नामक एक असुर के संबंध में आया और उसके वजह से वह भी राक्षसी स्वभाव का हो गया और इसीलिए उसके नाम में असुर जुड़ गया। नरकासुर की एक और कहानी सुनते हैं। एक बार उसने इच्छा ये प्रकट की कि वह देवी कामाख्या से विवाह करे। भारत के पूर्वोत्तर भाग में कामाख्या देवी बहुत मानी जाती है, तो कामाख्या देवी ने नरकासुर के सामने एक शर्त रखी कि अगर वह एक ही रात में नीलाचल नामक पहाड़ी में नीचे से लेकर ऊपर जो मंदिर स्थित है वहां तक अगर वह सीढ़ियां बना ले तो वह निश्चित रूप से उससे शादी करेंगी। लेकिन उसमें एक शर्त और थी कि इससे पहले कि भोर में मुर्गा बांग दे काम पूरा हो जाना चाहिए। नरका ने इस चुनौती को स्वीकार किया और इस कार्य को वो पूरी ताकत से करने लगा। भोर होने से पहले वो उसका काम लगभग पूरा होने ही वाला था। जब कामाख्या देवी को यह खबर पड़ी तो घबराकर उन्होंने एक मुर्गे का गला जो है वो पकड़ लिया। नतीजन मुर्गा बहुत जोर से बांग देने लगा और नरका को लगा कि भोर हो गई है। और वैसे देखा जाए तो भारत के पूर्वोत्तर भाग में सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो उसे ये लगा भी होगा कि हाँ भाई सचमुच भोर हो गई है। उसने अपना काम वहीं छोड़ दिया और छल से ठगे गए नरका को लगा कि ये काम अभी व्यर्थ है और वो वापस चला गया और इस वजह से कामाख्या देवी और उसकी शादी नहीं हो पाई। खैर एक आखिरी कहानी और है कि नरकासुर की मृत्यु से पहले उन्होंने सत्यभामा यानी भूदेवी का जो अवतार थी उनसे एक वरदान मांगा कि सभी लोग उनकी मृत्यु को रंगीन रोशनी जलाकर मनाएंगे और इसी दिन को हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं और यह दिन दीपावली से एक दिन पहले आता है। तो आज हमने भगवान कृष्ण सत्यभामा और नरकासुर की कहानी सुनी और ये भी जाना कि कैसे सत्यभामा ने इस दानव राजा को मारा। साथ में कुछ और लघु कथाएं जो थी उनके बारे में भी हमने जाना और आशा है कि आपको ये सारी कहानियां पसंद आई होंगी।